ओम शांति। आत्म प्रकाश भाई जी हम सबके बीच में पहुंचे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं। कुरुक्षेत्र के भाई बहने तो विशेष रूप से आत्म भाई जी को जानते होंगे, लक्ष्मण भाई जी के छोटे लौकिक अलौकिक दोनों संबंधी हैं, और विशेष सेवा की नींव आपके द्वारा ही वहां पड़ी हुई है। आप यज्ञ के विशेष वरिष्ठ भ्राता अनन्य रतन हैं, साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हैं। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे पथियाला में, उसी समय आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला 1950s में, और 1961 में आपने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, और उसके बाद जो दिल्ली में विशेष सेवाएं शुरू हुई, आपने एक पिक्चर गैलरी वहां लगाई, उससे ही म्यूजियम्स और एग्जीबिशंस बाद में जो सेंटर्स पर बने और होते रहे वो उसका सोर्स रहा, और 1980 में आप जगदीश भाई जी के साथ ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूवर का काम संभालने लगे, और 1992 में यहाँ शांति वन में ज्ञानामृत प्रेस बनी, आप सभी जानते हैं। तो भाई साहब ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूअल के एडिटर हैं, पूरे ईश्वरीय साहित्य का प्रकाशन करते हैं, मीडिया विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके अलावा भी यज्ञ की जो भी अन्य सेवाएं होती हैं उन सेवाओं में भी आप पूरी तरह से सहयोगी हैं। तो हम उनके अनुभवों से, इतना लंबा आपका ये जो अलौकिक जीवन का सफर है उसके अनुभवों से आज हम लाभान्वित होंगे। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी,
ओम शांति। हम सभी कहां बैठे हुए हैं, किस स्थान पर बैठे हुए हैं? मधुबन स्वर्ग भूमि में, स्वर्ग भूमि पर इसी पवित्र पावन भूमि पर हम बाबा मम्मा कहते हैं। दुनिया वाले तो बहुत उनको ऊंचे ऊंचे नाम देते हैं, जगदम्बा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, एडम एंड ईव, आदम और बीबी, सभी धर्मों में शिव बाबा के साथ साथ, भगवान के साथ साथ इन दोनों आत्माओं का भी नाम आया है। भिन्न भिन्न तरीके से यदि एक गॉड को भी मानते हैं, साथ साथ एडम और ईव को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं, और आदम और बीबी को भी मानते हैं। सभी धर्म में इनकी मान्यता है, और हम तो उनके साथ लगभग 12 वर्ष तक बाबा मम्मा के साथ, साकार में बाबा मम्मा के साथ 12 वर्ष तक रहने का, चलने का, खाने पीने का, उनसे इंस्ट्रक्शन लेने का, डायरेक्शन लेने का, हर प्रकार से, जैसे एक बच्चा मां बाप के साथ कनेक्शन में आता है, ऐसे आने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें तभी ये ज्ञान मिल गया, परिचय मिल गया, और बाबा ने अपना बना लिया, बाबा ने चुन लिया, भगवान ने हमको अपना चुन लिया। ये बहुत बड़ा भाग्य है। हम किसकी सिलेक्शन है? आप सभी देखो 200-250 आए हैं शायद, किसकी सिलेक्शन है? भगवान ने हमको सिलेक्ट किया हुआ है, उसने चुना है हम बच्चों को, आप सभी को, और चुन करके किसी कार्य में भी लगा दिया। हमें भी बाबा ने सिलेक्ट किया और किसी सेवा में लगा दिया, भगवान के मददगार बन गए, कहेंगे है तो वो सबको मदद करने वाला। लेकिन उस समय हम जब आए थे उस वक्त आपको सीन बताए, बहुत कम बाबा के बच्चे थे, 1,000, 2,000 होंगे, 3,000 होंगे मैंने समझता। सेवा केंद्र भी बहुत कम थे, सारे इंडिया में 15-20 होंगे, ज्यादा नहीं थे, बच्चे भी कम थे, छोटी फैमिली थी, बहुत छोटी फैमिली थी, और हर एक को जानता था, जैसे बाबा मम्मा सभी को जानते थे, और हम बच्चे भी आपस में भाई बोल सेंटर का है, इतने हैं, सब कुछ जैसे छोटे परिवार में जानते ऐसे जानते थे। बहुत खुशी होती थी, हम तो ये जानते सभी पूर्वजों से हम मिले हुए हैं, बाबा मम्मा तो हैं थे ही, उस समय उनकी मम्मा की माँ भी, रोचा उनका नाम था, वो भी जिंदा थी और वो भोग लगाया करती थी यहाँ। मम्मा की युगल भी, उनका नाम था मालूम नहीं, भूल गया मैं, वो भी जिंदा थी, और दादा विश्वकिशोर, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास, सभी जो दादाएं हैं, सब दादियां हैं, सब सलामत थे, और सभी से किसी न किसी रूप से कार्य व्यवहार में आने का मौका मिला, हैंडलिंग लेने का, उनके साथ मिलकर सेवा करने का मौका अवश्य मिला। भ्राता जगदीश जी आप जानते ना उनको, जानते हैं ना कि नहीं? हाँ, उनके साथ भी जब तक वो इस शरीर में थे, सन 61 से लेकर के यानी 2002 तक ऐसा कुछ है, उनके साथ भी काफी गहरा यानी सेवा का संबंध रहा, बहुत वंडरफुल सोल्स है वो, यानी योगी कहो, ज्ञानी कहो, और दूरदर्शी कहो, यानी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को विद्यालय का रूप देने का सेहरा उन पर जाता है, वो श्रेय जो है उनको है मिला हुआ है। पहले क्या था, छोटा सा था, लेकिन ये लिटरेचर, ये चीजें जो बनाई उन्होंने, एक रूप दिया विश्वविद्यालय का उन्होंने दिया। इस प्रकार से खुशकिस्मती है कि सभी, जब से सेवा शुरू हुई 1957 में हम ज्ञान में आए, मैं समझता हूँ बहुतों की तो उम्र आपकी नहीं, 58 ईयर्स हो गए, उम्र कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, 58 ईयर्स से इस ज्ञान में आने का कनेक्शन में आए, तब से लेकर अब तक निर्विघ्न उसी रफ्तार से, उसी मोमेंटम से चल रहे हैं। हम अकेले नहीं है, परंतु लगभग पूरा परिवार, माताजी पिताजी थे पुत्र जब रहे नहीं, 3-4 भाई हैं, बहनें हैं, भतीजे हैं, कुछ भी हैं, सारा परिवार इस ज्ञान में चल रहा है, तो ये भी खुशकिस्मती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं इस ज्ञान को पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बड़े प्यार से माता पिता ने और भाई ने इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया था। उस वक्त तो इंजीनियरिंग की बहुत वैल्यू थी, सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते थे, तो हमें एक भाई मिले ओम प्रकाश जो है इंदौर वाले, उन्होंने ये परिचय दिया कि आप आत्मा हैं, हम सभी को है, हिंदू धर्म में तो ये आत्मा का ज्ञान, तो आत्मा है ये तो लोग जानते ही हैं, और वो आत्मा शीर्ष होती है और जन्म लेती है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं हिंदू धर्म, और धर्मों में नहीं मानते, लेकिन हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हम जो अब कहते हैं, उसमें इसकी मान्यता है कि आत्मा है, शरीर छोड़ती है और जन्म लेती है, फिर शरीर छोड़ती है, ऐसा कुछ है। परंतु भिन्न भिन्न 84 लाख दुनिया कहती है, क्या क्या कहती है और बात है वो, लेकिन है ये जरूर, हम भी मानते थे, लेकिन जब उन्होंने पहला लेसन शुरू किया आप आत्मा है, तो हमने कहा हम आत्मा कैसे है, क्या प्रूफ है आत्मा है, आप बताइए हमें, कुछ दिखाइए, ये तो मशीनरी है शरीर, उसमें जैसे हार्ट है, ये है सब पुर्जे है, एक भी पुर्जा फेल होगा तो खत्म, कहां आत्मा है, आत्मा दिखती तो है नहीं कुछ। काफी दिन तक ये डिस्कशन चलती रही, 4-5-7 दिन तक। वो कहे आप आत्मा है, हम कहे हम तो आत्मा नहीं। फॉर दी सेक ऑफ डिस्कशन चलते रहे। वो कहे हां मैं कहूं ना, उसने लेकिन उसके अंदर तो मानते थे कि हम आत्मा है। तो एक दिन उसने कहा भाई आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। उसने हार कर कहा कि आप आज मान जाओ आप आत्मा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अंदर से तो मानता ही था मैं आत्मा। ये कहा कि मैं आत्मा हूं, हमारा नाम भी लौकिक आत्म प्रकाश है। तो हमने कहा मैं आत्मा हूं, मैं स्टोरी सुना रहा हूं, ये रोचक है। आपने ज्ञान तो बहुत सुना होगा, बड़ी क्लासेस की होंगी, लेकिन स्टोरी शायद नहीं सुनी होगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस इतना मेरा बोलना था। बात मत पूछिए, इतना बोलते ही मुझे जिससे धारणा शुरू हो गई, जिसको भी देखे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। भ्रकुटी में उस वक्त आत्मा कोई बिंदु रूप नहीं थी, अंगोष्ठ सदृश मानते थे। आत्मा जो है अंगोष्ठ सदृश है, वो मस्तक में निवास करती है, जैसे टीका लगाते हैं ना ऐसे है। तो कहा, मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त ये मानते ही कि मैं आत्मा हूं, बस अनुभूति जिसे बाबा ने पकड़ लिया उस वक्त। मैंने कहा ना उस वक्त बाबा भी फ्री थे, आबादी यानी हमारे भाई बहन बहुत कम थे, बहुत कम थे, तो वो भी फ्री थे, उनको भी कोई भाई बच्चे चाहे बाबा के। उसने जैसे पकड़ लिया उसी वक्त, बस जो भी मैं पैदल भी चलूं तो जैसे आत्मा चल रही है, किसी को देखूं बाजार में जाकर देखूं ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, हर एक ब्रिकुटि में देखता रहूं, दृष्टि एकदम प्योर हो गई, वृत्ति प्योर हो गई, बड़ा हल्कापन महसूस होने लगा। साइलेंस में चले गए, डीप साइलेंस में, बात करने को दिल ही ना करे, जाके वो कॉमन रूम में कैरम भी खेलने को दिल ना करे, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, शांति में चले गए। तो वो जो सामने वाला कहता है इसको क्या हो गया, ये वो भी हैरान था कि इतनी जल्दी कैसे बदल गया ये। तो मैंने बहुत अनुभूति होने लगी, जैसे अब बॉडीलेसनेस फीलिंग आई। तो मैंने उसको कहा भी ये तो बड़ा अच्छी बात है, तो आप मुझे और भी सुनाओ, ये क्या आपके पास ज्ञान है, ये बहुत सुंदर चीज है। तो आप मानेंगे 2-4 घंटे में, एक दिन के अंदर ही आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर ये सारा ज्ञान सुन लिया हमने। ऐसे लगे कि जैसे मैंने पहले सुना हुआ है। हम बताएं आप, मुरली सुननी शुरू कर दी, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बल्कि ऐसा लगे समथिंग रिवीलिंग, कोई रिवील हो गया है। बुद्धि रूपी जो गांठ थी ना, उसमें गांठें बंधी हुई थी, सब खुल गई एकदम। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। आप बताइए, आप खुद सोचो कितना हमारा सुंदर ज्ञान है, एकदम रैशनल, भक्ति का अंश नहीं है इसमें। बाबा की मुरली पर क्या कहता है, मुरली में क्या आता है, गंगा के बारे में, गंगा पद्धति पामनी नहीं है, स्पष्ट कहता है, डरता नहीं है बाबा के वो लोग क्या कहेंगे, स्पष्ट कहता है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, स्पष्ट कहता है, भले कुरुक्षेत्र वाले कुछ भी मानते हो, देखो क्या बोलो, क्या कितनी जबरदस्त बात है। शिव और शंकर में महान अंतर है, वो बच्चा है, वो बाप है, बताइए। सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है ना बात, ये कितनी वंडरफुल बातें लगी मैंने, जब कमाल है। राम जब राम है तो रावण नहीं, बोलो आप, हम सुनते थे राम रावण की बातें, बड़ी वो रामायण देखते थे करते थे, स्पष्ट कह दिया उसने, कभी ऐसी रामायण हुई नहीं दुनिया में। आप बात राइट है कि रॉन्ग है, क्या समझते हैं आप, रावण था ऐसा कोई नहीं, बताओ सारी दुनिया। अब भी बात करो उस रामदेव से, वो मानता है कि राम था, रावण था, सेतु पुल बनाया, ये बना, हनुमान उड़ के गया, उसको मारा पीटा, ये क्या हिंसा की। बाबा कहता है ये कुछ भी नहीं था, ये कहानी है। अब बताइए ये बात कहना सारे समाज को कितनी बड़ी बात है, ये सारी रामायण खत्म, रामायण नहीं तो क्या हुआ, रामायण ही नहीं है। सीता चुराई नहीं गई, सीता हम सब सीता हैं, तो कितनी जबरदस्त बात है, हम सब सीता हैं, राम बाबा शिव बाबा है वो आता है, हम जब लक्ष्मण रेखा मर्यादा को पार करते हैं रावण पांच विकार उठा लेते हैं, फिर हमको ले आता है वो रावण पर जीत पहनाकर कहाँ ले आता है अयोध्या में जहां युद्ध कहीं होता नहीं वो सत्यों का। कितनी वंडरफुल बातें सुनी हमने, कमाल हो गया। यानी परमात्मा कौन है? ज्योति बिंदु शिव का ज्योतिर्लिंगम कहते थे, शिव है उसका नाक नहीं मुंह नहीं कान नहीं पाँव नहीं, ये जो कितनी क्लियर कट उसकी एक्सप्लेनेशन है। हम जाते थे गीता स्कूल में पढ़ते थे, वो जाते थे एक दुख भजनेश्वर मंदिर था, अभी भी होगा शायद, वो वहां सांप घूमते रहते थे, हम कहते थे यही परमात्मा ये क्या है पता नहीं, किसी को मालूम नहीं था, पूछो तो। यानी कितनी जबरदस्त नॉलेज है ये, वंडरफुल नॉलेज है। अब देखो दुनिया कहती है हिस्ट्री लीनियर है, लोग सब शास्त्रों में कहते हैं चाहे इतने लाख इतने हजार इतने हजार ऊपर कब पहुंचेगी वहां पर, बाबा क्या कहते हैं केवल 5000 वर्ष, और भी हु भूर पीट होता है, उसके चार युग बराबर हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सत्युग, इट गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। कितनी कमाल की बात है, हमें इतना अच्छा लगा ज्ञान, रैशनल साइंटिफिक एक्सपीरियंसेबल प्रैक्टिकेबल ऐसा लगा मैंने कहा। और शास्त्र गम शास्त्रों में भी इसकी बातें आती है, बहुत सुंदर लगा। उसी ज्ञान के आधार पर हमें निश्चय हुआ ये किसी इंसान की बात नहीं है। आप बताओ आत्मा 84 लाख गुना नहीं भोगती, अब बताओ किसी ने नहीं सुनाया था आज तक हमें, कितनी खुशी होगी हमको ये बात सुन करके। मैंने कहा ये तो वंडरफुल चीज है, कोई किसी शास्त्र में नहीं, कोई गुरु गुसाई ने नहीं बताया कुछ नहीं किया, और एकदम कोई संकोच नहीं उसमें, कोई छुपाना नहीं, एकदम क्लियर कट बात। तो अब बताइए हमने कहा ये तो जो ज्ञान जो देने वाला उसे तो अवश्य मिलना चाहिए, हु इज दैट पर्सन, कौन दे रहा है ये ज्ञान? उस वक्त चित्र नहीं बने थे अभी, ना त्रिमूर्ति था ना झाल था ना कुछ था, मैं समझता हूं हमने देखे नहीं थे, हमारे थोड़े दिन के बाद आए थे जापान से, पर कहीं से छप के आए थे। तो हमने कहा भी बताओ ये ज्ञान जो मिल रहा, और मैं योग का अनुभूति बहुत होती थी, चलते फिरते ऑटोमेटिक बाबा खींच रहा है, कोई पुरुषार्थ नहीं। आप सभी को अनुभव होगा जो शुरू शुरू में आए होंगे, ज्ञान सुना होगा तो बहुत बाबा ने मदद की होगी, बहुत खींचा होगा, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता शुरू शुरू में, हमें भी ऐसे बड़ा आनंद आया बड़ा मजा आया। तो हमने कहा ये ज्ञान कौन दे रहा हमें बताओ तो सी, हम मिलने जाए उनको। अभी 7-8 दिन भी हुए थे, चले बाबा से मिलने के लिए, बाबा कहना जो जिसको निश्चय हो जाएगा तो रुकेगा नहीं, चल पड़े हम दिल्ली में, बाबा आए हुए थे, बाबा मम्मा दोनों आए हुए थे, उनके पास चल पड़े, रात के 11 बजे पहुंचे, सवेरे फिर मिले उनको। तो क्या लगा हमको, जैसे हंस एकदम फरिश्ते हैं दोनों, फरिश्ती की जोड़ी है, वाइट सब चीज वाइट, कपड़े भी वाइट चेहरा भी वाइट एवरीथिंग वॉज वाइट, बिछौना भी वाइट सब चीज, हम कभी देखी नहीं थी ऐसी जगह। तो देखा आप फरिश्ते हैं, उनसे मिले, और हमें किसी ने नहीं कहा था कि तुमने मिलना कैसे है, बाबा की गोद में गए, मम्मा के भी गोद में गए, माँ मम्मा होती ना माती, ऐसे नहीं कि हाथ जोड़ो पांव पड़ो कुछ नहीं था वहां, ये भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे इस चीज से बड़ी चिढ़ थी कि आप पांव पड़ो हाथ जोड़ो ये करो, क्योंकि हम देखते थे पंडितों को, हम एक दफा हरिद्वार गए थे, हमें बड़ा डर था, भागवत में आता है एक कहानी आती है, अगर आप हमारे हिंदुओं में आए अगर तुम जनेऊ नहीं डालोगे और तुम मर गए तो नरक में जाओगे, ये कहानी है, कहानी है एक दृष्टांत आता कोई। तो मैंने कहा भी हम तो जरूर जाए हरिद्वार, ये तो मर गए, ये डर था, मैं और मेरे भगवान भाई थे हम दोनों, उसको भी लेके साथ माता जी को भी लेके हरिद्वार गए, वहां पर जो पंडे बैठते हैं वहां वो हरिद्वार कंठे पर गंगा के, उनको देख करके और ही बड़ा गुस्सा आया, बहुत खराब लोग वो इधर खींचे उधर खींचे, हमने कहा हम तो यहां स्नान नहीं करेंगे, फिर आरएस समाज में जाके जनेऊ डाला और वहां से वापस आया। तो बहुत चिढ़ थी इन लोग ऐसी चीजों से। तो क्या हुआ, यदि एक ऐसा ज्ञान जो मिला हमने कहा कितना अच्छा है, बाबा मामा से मिलने के लिए है ना, वहां फूल देना है ना पांव पड़ना है ना हाथ जोड़ना है ना कुछ करना, सीधे गोद में जाना है और टोली खानी है ये की। तो अब देखिए बाबा मामा को देखकर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया हमारे प्रति, एक वरदान कहो या महावाक्य कहो कुछ भी कहो, बाबा ने पता था उनको कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और अभी 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि ये पढ़ाई बच्चे तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, देख लीजिए। अब ये किसे क्या वरदान कहेंगे, क्या कहेंगे, काम नहीं आएगी यार। क्यों? उस वक्त भी विनाश नजदीक सामने था। मैं तो जब से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, कोई ना कोई विनाश की बात होती रहती है। आप देखो क्या हालत है दुनिया की इस वक्त, व्हाट इज हैपनिंग। उस वक्त भी यह था, 1857 था और 1857 में 100 साल पूरे होने वाले थे। हमने कहा फिर होगी झगड़ा यहाँ हिंदुस्तान में, 100 साल के बाद झगड़ा होता है, ऐसा सोचते थे। मिस्र था, इसराइल था, स्वेज कनाल का झगड़ा था, भाई कभी कभी भी लड़ाई चालू हो सकती है। अब भी वही हाल है। तो कहने का मतलब बाबा ने कभी देखो, बाबा दो बातें बाबा के कारण बने सब कुछ उसके, यानी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना के, बाबा को दो चीजों पर आधार है। सबसे पहले महाविनाश देखा, महाविनाश हो बाबा ने खुद देखा, लोग रो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, वो पृथ्वी हिल रही है, भूचाल आ रहा है, तूफान आ रहा है, सब बाबा ने देखा। ये एटॉमिक वार हो रही है, आग लग रही है, सब कुछ देखा, उससे वैराग आया। दूसरा क्या देखा बाबा ने, कि नया युग आने वाला है, ऊपर से आत्माएं आती हैं, ये साक्षात्कार अभी यहां भी बना हुआ चित्र, और कोई प्रिंस बनता है, कोई प्रिंसेस बनते हैं। ये आधार था बाबा के सारा न्योछावर होने का। उन्होंने कहा कि विनाश मुझे भी हुई का बच्चे, विनाश तो सामने खड़ा हुआ है, क्या क्या फायदा है इसका। स्पष्ट कह दिया, कभी किसी को कोई कहता नहीं है वैसे। ये अभी 8-10 दिन हो और कह दे भी पढ़ाई से कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन बाबा हमारी जन्मपत्री जानते थे, स्पष्ट कह दिया। तो हमने कहा ठीक है, हमें भी इतना निश्चय हो चुका था कि कौन है, कौन पढ़ा रहा है, किसका ज्ञान है, ये कोई इंसान का ज्ञान नहीं है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। गॉड हैज कम, सुना जी, गॉड हैज कम, परमात्मा आ चुका है। तो बताइए, हम पर भगवान के बच्चे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जिसको ये निश्चय हो जाए परमात्मा का कार्य चल रहा है, तो क्या करेगा वो, बोलो। हमने यही सोचा कि जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, उसी वक्त निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया। या तो निश्चय ना हो, जब हम सभी को निश्चय है कि परमात्मा का कार्य चल रहा है, अब संगम युग है, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, दुनिया बहुत दिन ये चल नहीं सकती। भगवान ने कोई ऐसी दुनिया, इतनी खराब दुनिया नहीं बनाई थी। क्या बनाया था? सतयुग बनाया था, स्वर्ग बनाया था, ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। ये जाएगी जरूर, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, होगा जरूर। चलो वो भी छोड़ो, हम क्या है, आप हम कभी भी जा सकते हैं। दो प्रकार का विनाश है ना, एक तो अपना भी कोई भी जा सकता है, हमारे सामने कितने चले गए देखो, वो भी है, साथ साथ दुनिया का भी भरोसा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, बाबा ने कहा तो हम वैसे करेंगे। हम तो अपने आए बाबा से मिलकर के, अपने जहां पटियाला में पढ़ते थे वहां है, तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को, इंग्लिश में लिखा, पता नहीं सुनाया होगा आपको पहले कभी, और बाबा का भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में जवाब आया, बड़ा सुंदर लेटर लिखा। तो बाबा ने ये लिखा, उसका सारांश यह था, बाबा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन, वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। बहुत बड़ी जो बिल्डिंग आप सत्युगी बना रहे हैं, इतना जो संगम पर आकर के बना रहे हैं, उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दैट। फिर कहा कि आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज। इस प्रकार से लेटर लिखा। तो बाबा ने जवाब दिया, बच्चे बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर फैमिली। अपने पेरेंट्स को, फैमिली को ज्ञान दो और साथ साथ इंजीनियर्स को भी ज्ञान दो। तो हमने वही कुछ किया। हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, हॉस्टल में रहते थे हम दोनों, और दूसरे जब भाई थे हमारे ओम प्रकाश जो है, साथ साथ रूम था, हमने अपना कमरा बना दिया, दरी बिछा दी, रेड बल्ब लगा दिए, ग्रामोफोन लाया वो सुई वाला, गीत बजाओ और योग करो, लोगों को भी बुलाओ, अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को, उनको ज्ञान सुनाओ। तो दो दिन के बाद वार्डन कहे भी आप ये क्या करते हो, छुट्टी करो यहां से। तो हमने हॉस्टल ही छोड़ दिया। फिर क्या क्या करेंगे हॉस्टल का, जब हम वहां ज्ञान नहीं सुना सकते। कई स्टूडेंट्स क्लास में वो बन गई हमारी छोटी गीता पाठशाला, तो हमने वो छोड़ करके बाहर कमरा लिया, फिर वहां पर सेवा शुरू की। फिर बीच बीच में बाबा मामा से मिलने जाया करते थे हम, बताएं आप, वो कभी दिल्ली कभी मधुबन आते थे, तो सारा समाचार सुनाते थे। विशेष मम्मा से बहुत कनेक्शन था, क्योंकि छोटे बच्चे माँ से होते ना, ज्यादा संबंध होता था माँ से। मम्मा ऐसी थी जैसे कि चलेंगे ना कोई जमीन को भी दुख ना हो, चलेंगे भी ऐसे, बात करेंगे कि ऐसे कि जिसकी बिल्कुल ही उससे बड़े धीरे धीरे धीमे धीमे, और कभी किसी को कुछ कहेंगे नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, मुस्कुरा देंगे। केवल मुस्कुराना मीन्स समथिंग रॉन्ग, कोई बात है जो मुझे वो समझाना चाहते हैं। तो क्या दफा, एक दफा क्या हुआ, हमारे पटियाला में मम्मा आई, बाबा भी आए थे, मम्मा भी आई थी, बाबा चले गए, मम्मा वहां रहेंगी। हम सब ब्रह्मा भोजन बैठे कर रहे थे, तो हम तो लड़के थे, स्टूडेंट थे, थाली में आवाज भी आ रही थी चम्मच की, और खा भी रहे थे। तो मम्मा मुस्कुरा दी, फिर हमने कहा खाते खाते मुस्कुराया क्यों है, ताकि वो आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी खाने की भी ऐसी वो हो शालीनता से शिष्टता से खाएं कि खाएं ऐसे कि खाने के चम्मच की आवाज भी नहीं चाहिए। एक दफा बाबा मम्मा चल देते तो बाबा आगे चलते थे, मम्मा पीछे, हम उनके फिर पीछे चलते थे। तो मैंने पूछा मम्मा, मम्मा ये जो अब उस नए अभी 7 दिन जब पहली दफा गए, इतना कुछ चाय पिला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये सारा पैसे कहां से आ रहे हैं, स्पष्ट डायरेक्ट पूछा। ब्राह्मणी ने साथ थी हमारे जो हमें मिलाती थी बाबा मम्मा से, अब मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा बताओ, अगर आप सरोज, आप सरोज बहन से पूछो कि आप सारा इतना कुछ करते हो, भोग बनाते हो, ये करते हो, कहां से आता है पैसा आपका, कोई भंडारी उस वक्त होती नहीं थी, कोई किसी को कहता भी नहीं था, तो बताइए मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा बताओ है? मम्मा ने कहा ऊपर, ऐसे उंगली कर दी, तो ऊपर से ही आता है, बाबा टच करता है तो तभी तो आता है, लोग कौन कौन करता है, हमें तो मालूम नहीं था, अभी थोड़े तो छोटे तो हम थे ही 7-8 दिन के। तो हमने कहा बात होगी ठीक है, ऊपर से आता ही होगा, क्योंकि हमारे एक ध्यानी दादी थी अंबाला सिटी में, अंबाला कैंट में, हमारे पटियाला में आती थी हर गुरुवार या हर संडे को, वो भोग लगाते थे, यूं करते थे, फूल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मैंने क्या पता लगता है ये ऊपर से आता ही हो, जो ले आते हो क्या पता लगता है, उस वक्त हम बिल्कुल छोटे तो थे ही। तो मतलब कहने का ये है कि कभी कोई इतना था इशारा भी नहीं करता था। और आप देखिए आप तो बहुत आगे बात बढ़ गई, म्यूजियम बनने हैं, हॉल बनने हैं, ये बनना है, तो सबसे पर्ची दिखवाते होंगे मैं समझता हूँ, या कहते भी होंगे भाई आप करो, लेकिन उस समय बाबा मम्मा के दिनों में ये कभी नहीं था, मजाल है कोई इशारा भी करे, तो ऐसा था, ऐसी व्यवस्था थी उस वक्त, अभी भी ऐसी होनी चाहिए देखा जाए तो। तो कहने का मतलब बाबा मम्मा से ऐसी हैंडलिंग मिली, इस प्रकार से चले। फिर वो हम फिर बाबा ने एक तो कहा अपने स्टूडेंट्स को, हम सब स्टूडेंट्स को ज्ञान सुनाते थे, वो कहेंगे आपको क्या है, दिमाग ठीक तो है आपका, वो ये कहते थे आइदर हम साइलेंस में रहते थे, वो सुनाते भी थे, आइदर यू हैव बिकम ए सेंट और यू हैव बिकम ए बीस्ट। साइलेंस में कौन रहता है एकांत में, या तो सेंट रहते हैं या जंगल में कौन रहता है, जानवर रहते हैं। हमने कहा नो, आई एम बिकमिंग ए सेंट, हम सेंट बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम फिर जब ये उनको ज्ञान दिया, अपनी गीता पाठशाला चल गई, फिर बहने आ गई, ठीक हुआ, फिर हम अपने लौकिक फादर मदर को देने के लिए गए ज्ञान घर में। अब बताइए, पहले माता जी को पकड़ा, उनको ज्ञान सुनाया, अच्छा लगा, क्योंकि सब भक्ति वाले थे। पिताजी जब हमारे लौकिक पिताजी ने बड़ी भक्ति की हुई थी, जबरदस्त भक्ति थी, रात दिन उनके भागवत पुराण होता था उस पर। आप जानते होंगे भागवत पुराण एक कथा, वो कहानियां किससे बहुत है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, सारी वो किसे कहानियां हैं। हम भी सुनते थे, साथ साथ चलते थे, सुनते रहते थे। बड़ा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा बना हुआ था भक्ति मार्ग का। तो वो उनको सुनाया, उसने ज्ञान तो ठीक है बिल्कुल मान के जल्दी, लेकिन वो हम उनको लिख दी कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, जो कमेंट्री होती है, परम धाम का वासी हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। उर्दू जानते थे और कुछ जानते नहीं थे, या पंजाबी जानते थे गुरमुखी। वो अपने खेतों में जाएंगे, अंदर अंदर बोलते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। तो उसने कहा बात तो आपकी राइट है, लेकिन एक बात मेरी शर्त है, मैं तब ज्ञान को मानूंगा अगर आपका बाबा हमें कुछ दिखा दे। दिखाना समझते हैं ना आप, कोई साक्षात्कार करा दे। तो मैंने कहा मुझे तो अभी आज तक हुआ नहीं। हम औरों को, बहनों को देखते हैं, दादियों को, वो तो करती हैं, हमें तो आज तक कोई रेखा भी देखने में नहीं आई, तो मैं क्या दिखाऊंगा। उन्होंने कहा जब आपका बाबा दिखा देगा मैं तब ज्ञान को मानूंगा। तो हम फिर भोग बैठते थे, जब गुरुवार होता था हम सभी, समर वेकेशन थी तो हम वहां रहे तो बैठे। एक दफा क्या हुआ, उठ के खड़े हो गए, वो सब बैठे हैं, वो उठ के खड़े हो गए। उठ के खड़े होकर वो किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में नहीं आता। तो फिर वो बड़े उदास होकर नीचे उतरे। मैंने पूछा क्या, हम तो बड़े खुश थे भाई कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कोई बात तो जरूर है। जब उनको पूछा क्या है जी, कहते हैं मैं कहीं गया, वहां बहुत छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण सामने आया, मोर मुकुटधारी बड़ा सुंदर, उसको मैं पकड़ूं वो मेरे हाथ में नहीं आए, यहां पकड़ूं तो यहां चला जाए, यहां पकड़ूं तो यहां चला जाए। तो फिर उसके बाद आपके बाबा जी आए, हमारे बाबा, अभी तो उन्होंने बाबा मारा नहीं था उनको, उन्होंने कहा कि बच्चे जब तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, इस ज्ञान को फॉलो करोगे, धारणाओं पर चलोगे, खान पान ठीक करोगे, तो श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। ये बाबा ने भी शर्त लगा दी। तो वो तो थे ही काफी, 50 साल 60 साल के तो होंगे शायद, मैं समझता हूँ। वो उनका ठीक है, सब कुछ ठीक कर लिया, वो जो होता छोटा जो थोड़ी बहुत बातें थी। फिर अगले दफा मैं योग में, वो भोग अगले हफ्ते फिर गए, तो फिर उनको साक्षात्कार हुआ, फिर वो श्री कृष्ण को मिले, बहुत जोर से अपनी गोद में लिया, बड़े आंसू बहाए, बड़े खुश हुए वो। उसकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। पता है बाबा को कहते हैं भक्त वत्सलम, भक्तों के भगवान, वो बड़े भगत थे बहुत। उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया, वो निश्चय बुद्धि है, और सब आसपास देखने वाले भी निश्चय भी है कि क्या हो रहा है, ना यहाँ दादी है, ना उसका दादी नहीं, ना कोई बहन है, ब्रह्मा कुमारी है, ना ये बाबा से मिले, ना किससे मिले, इनको इस ऐसे कैसे साक्षात्कार हो गया। और फिर तो ऐसा साक्षात्कार होता था, हम कुछ संदेश लेके आओ, वो संदेश लेके आए बाबा से, इतने अच्छे संदेश ही बन गए, कोई भी काम वो लौकिक भी वो संदेश लेके आते थे, बताते थे, और बिल्कुल एक्यूरेट होती थी बात। तो हम तो बड़े खुश थे। तो बाबा को एक तो मैं लिखा, बाबा हमारे बड़ा खुश था मैं तो, बाबा हमारे लौकिक पिताजी बड़े ध्यान में जाते हैं। बाबा ने कहा मैंने भी बहुत साक्षात्कार किया है, यही बाबा ने लिख दिया, यानी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया साक्षात्कार को। नहीं, बाबा कभी भी साक्षात्कार को वैल्यू देते नहीं थे, लेकिन साक्षात्कार जो हम ध्यान का पार्ट है, इससे यज्ञ में स्थापना में बहुत बड़ा पार्ट अदा, कई राज इस साक्षात्कार से खुले। तो ऐसा वो निश्चय बुद्धि बन के हमारे माताजी पिताजी, तो हम भी एक कैसे ना कैसे करते करते 4 साल का कोर्स था वो पूरा कर लिया। कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, कभी कोई प्रदर्शनी लग रही है, कभी हम मधुबन जा रहे हैं, कभी ये भोग है, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, सारा टाइम हमारा इसी में जाता था। पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, पढ़ाई की विद डिसइंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, हम बता दें आपको, क्योंकि इच्छा बाबा ने कहा पढ़ाई काम नहीं आएगी तो क्या करना है। भगवानो वाच, कौन बोल रहा था ये भगवान। तो पढ़ाई कर ली पूरी, बोला हम जब जाएं क्लास में हफ्ते के बाद जाएंगे, आप जानते हो इंजीनियरिंग ऐसी है, अगर आप एक लेसन मिस करेंगे अगला लेसन समझ नहीं आपको आएगा। लेकिन पता नहीं कैसे हम वो करें, हमारी हाजिरी बोले एपी मेहता, मैं कहूं जैसा, तो लोग हंसते थे, देखो आ गया, कहां से आ गया ये, बहुत हंसते थे कि प्रिंस आ गया, ये प्रिंस हैं लोग, हम तो प्रिंस बनने वाले थे। तो क्या हुआ, तो जैसे कैसे हम पास हो गए विदाउट स्टडी, हम बता दें आपको, कोई स्टडी नहीं की, परंतु जो आया लिख दिया, उसने समझो पास हुए। आई वॉज अ टॉप स्टूडेंट इन द अप टू 12th हो, FSC तक हम टॉप स्टूडेंट थे, लेकिन ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आई वॉज द लास्ट टू पास द इंजीनियरिंग स्टडी, सबसे आखिर आदमी मैं था जो पास हुआ। हमें क्या करना था आप बताओ, और हम कभी डिग्री लेने भी नहीं गए, वो पहनते थे गाउन, हम वो डिग्री लेने नहीं गए। मैं कहा डिग्री लेंगे, फिर बाबा ने तो कहा था कि बच्चे तुम्हारे पढ़ाई काम ले आएगी। फिर हम अपने लौकिक माता पिताजी ज्ञान में आ गए, सब ज्ञान में आ गए, लौकिक भाई भी ज्ञान में आ गया, सब आ गए। तो हम इसके पढ़ाई इंजीनियरिंग पास करने के बाद यही मधुबन में आए। उससे पहले बीच बीच में कोई मधुबन बहुत नहीं आते थे, साल में एक दो बार आते थे, अब तो आप कितनी दफा आती है। तो हम जब एक दफा फर्स्ट टाइम मधुबन में आए तो क्या देखा हमने, एक बड़ी नजारा देखा, हम सुनाते हैं आपको। क्या था कि उस वक्त बाबा की एज जो थी 80 साल की होगी, 80 years, 80, और जो अभी आप देख रहे हैं एक कुछ नहीं था यहां पर, ना ये हाल था, ना हिस्ट्री हाल था, सुखदाम तो बाद में था ही नहीं, केवल जो टीन का छप्पर वाला आप देखते हैं ना, यही जगह थी बस, और थोड़ा सा यहां भंडारा था, नथिंग वाज देयर, ऑफिस भी कुछ नहीं था, सारा मैदान था इधर, जो आप अभी शांति स्तंभ देखते हैं, यहां टेनिस कोर्ट था, ये वो सामने कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, घास था और वृक्ष भी थे कुछ। बाबा हम जब आए, बाबा एट द एज ऑफ 80 क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, सब बच्चे होते जैसे वो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण था, गेंद खेलता था, गेंद चला गया, ऐसे सब बच्चे दादा विश्वनाथन उनको बाबा को डालते थे, बाबा खेलते थे। तो मैंने उसका फोटो लेने की कोशिश की, मैं फोटो ले, ऐसा सीन बहुत जबरदस्त है, ये शिव बाबा ब्रह्मातन में प्रवेश करके खेल रहा है और बच्चों को खिला रहा है। जब मैंने फोटो लेने की कोशिश की, फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बड़े अच्छे, देखो, बाबा ने कहा रुको, नहीं मत लो। बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का फोटो भी नहीं आएगा, उसकी आत्मा का तो, मेरा तो फोटो आएगा नहीं, परंतु ये शरीर तो किसी काम का नहीं, बताइए। यानी बाबा की हमेशा ये वो होती थी कि शरीरधारियों में या शरीर की तरफ कोई भी अट्रैक्शन उसकी परवाह नहीं चाहिए, इससे न्यारा बनना है। जब बाबा से मिलते थे कहते बच्चे किससे मिल रहे हो, ब्रह्मा बाबा से नहीं, शिव बाबा से मिल रहे हो। जब चलेंगे पैदल बाबा के, किसके साथ चल रहे हो, शिव बाबा के साथ। हर समय यही बाबा बार 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 शिव बाबा की याद दिलाते थे ताकि बच्चे शिव बाबा को ना भूले, क्योंकि शिव बाबा की याद में ही पदम, कदम में पदम है और कुछ नहीं, और भी कुछ याद करोगे उससे फायदा कुछ नहीं। तो ये बाबा हमें शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार से बाबा के पास है तो हमारे लौकिक माता पिता भी साथ, उन्होंने कहा भले ये सेवा करे, लेकिन हमारे उन्होंने हमें कहाँ भेजा, पहले जयपुर भेज रहे थे, फिर हमें भेज दिया भ्राता जगदीश जी के पास दिल्ली में। लौकिक पिताजी को ख्याल आया, उन्होंने मम्मा से कहा मम्मा अगर ये कुछ नौकरी जॉब वगैरह करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ में डाले परंतु करे तो अच्छा है। मम्मा ने कहा नहीं, भृगु ऋषि जो इसकी जन्म पत्री को जानने वाला बाबा है, तो जैसे बाबा ने कहा वैसे ही करना है। उस वक्त से लेकर 1961 से लेकर के हम इस टोटली इस ईश्वरीय सेवा में लग गए। कितने हो गए साल, 54 साल हो गए, कितने 54 नहीं है ऐसे, और 4 साल पहले पढ़ाई की थी तब भी बाबा के सेवा में लगे रहते थे। तो बाबा ने वहां भेजा, खूब उनसे ट्रेनिंग ली, बहुत वंडरफुल सोल थी जगदीश भाई की, उनकी योग, उनका ज्ञान, उनकी जैसे बाप समान थे वो, देखा जाए तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। वो भी सोचते थे क्या बाबा ने मुझे ऐसा व्यक्ति क्यों भेजा जो इंजीनियर है लेकिन यहां तो लिटरेचर है, उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो बाबा जानते थे क्या करना क्या नहीं करना। इस प्रकार से कुछ समय बाद एग्जीबिशंस बननी शुरू हुई। हम बताए कैसे बाबा से कनेक्शन जुड़ता है। एग्जीबिशन बननी शुरू हुई तो हमने एक चित्र बनवा करके सीढ़ी का बाबा को भेजा, तो बाबा को बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद बाबा ने मुझे डायरेक्ट लेटर लिखने शुरू कर दिए। वैसे भी बाबा बीच बीच में लिखते थे याद प्यार, लेकिन डायरेक्ट करेक्शन, डायरेक्शन, बच्चे ये बनाओ, बच्चे ये बनाओ, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, इस प्रकार की डायरेक्शन बाबा से डायरेक्ट हमें मिलने शुरू हुई। ये बदलो, ऐसा करो, ये सीढ़ी बनी है देखो, ये पत्नी तब जमाने की है कैसे। उसमें बाबा बड़े अथॉरिटी से बात करते थे, ऑल माइटी अथॉरिटी जिसे बोल रहा है, कहता है गुलजारीलाल नंदा को लगा दो, उसको लो उसमें सेज पे बिठा दो कांटों की, उसके पीछे तकिया लगा दो फाइबर प्लान का, हाथ में प्याला दिखा दो, भीख मांग रहा है ना, यार देखो ये सारा बाबा लिखते थे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो सागर में वो डबो रहे हैं, देवी को बनाते हैं डबो देते हैं, ऐसा खुला लिखते थे, बात मत पूछ, कोई परवाह नहीं भाई, क्या कही गवर्नमेंट क्या कहेगी। फिर कहा इंदिरा गांधी की बात थी, वो सब बाद की बात थी। चित्र बनाओ, वो पर्स निकाल दिए जेब में से, पहले उन्होंने कहा हाँ वो है यहाँ पर देखो, पहले लक्ष्मी नयन का राज था, डबल क्राउन, फिर डबल क्राउन, फिर सिंगल क्राउन, फिर रामल ने प्योरिटी का ताज छीन लिया, और कलयुग में बेचारे का पर्स भी निकाल दिए, वो पहले प्रिवी पर्स मिलते थे ना इनको राजाओं को, वो भी निकाल दिया। बाबा ऐसे ऐसे चित्र बनवाते थे, बाबा कहते कोट ऑफ आर्म्स दोनों चित्र बड़ा जबरदस्त, यादव कौरव पांडव क्या करत है, यादवों का वो दिखाओ तीरो, उनके कोट ऑफ आर्म्स, कौरवों का ये दिखाओ, पांडवों का त्रिमूर्ति दिखाओ। इस प्रकार से बाबा से बहुत गहरा कनेक्शन हो गया, अच्छी तरह से मिलने जुलने का कनेक्शन हो गया, आने का हो गया। तो एक बार हम 15-20 चित्रों का सेट बना करके, पहला सेट बना करके बाबा को दिखाने के लिए मधुबन में हिस्ट्री हॉल बन चुका था, वहां पर आए बाबा ने और दीदी ने देखा, फिर बाबा ने अपने कमरे में बुलाया। आप कमरा देखा बाबा का ना, वहां एक वो पड़ा है गद्दी है, और उस वक्त कुर्सी नहीं थी, गद्दी होती थी, और बाबा की चार पाई, मैं गया और नीचे बैठने लगा। बाबा कहता नहीं मेरे साथ बैठो, कौन कह रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मेरे साथ बैठो। मैं तो उसको लगा भाई झाका, मैं कैसे बैठू बाबा के साथ, क्या बैठो। और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी, बच्चों की, आप सभी की, यहां भी और कहां, वहां भी, सत्युग में भी। तो अभी देखो आप, हम सभी क्या हैं, बाबा के वारिस हैं ना, अब हम बाबा की गद्दी के मालिक हैं, आप सेंटर चलाने वाले कहीं होंगे, घर भी अपना अगर समझते हैं बाबा का घर है तो किसकी गद्दी है, कोई बिजनेस करता होगा कि नौकरी करता होगा, ये समझो कि ये बाबा का है, तो बाप के हम गद्दी के मालिक हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। हमारा ज्ञान अमृत भवन है किसका है, बाबा का है, हम वो चलाते हैं, तो बाप की गद्दी तो बच्चों की गद्दी, और यहां भी जो यहां संभालेगा तो वो सत्युग में भी संभालेगा। तो आप संभालते हैं ना गद्दी कैसे, टीचर भी, टीचर नहीं घर वाले भी ऐसे समझे, ये समझो बाबा का घर है ये, मैं संभाल रहा हूं। मैं कहता हूं आप बाबा 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 करते रहो, कोई विघ्न आने वाला नहीं है, हम बता दें आपको। मैं तो कहता हूं मन में बाबा बाबा, ये अंदर चलता रहे चलता रहे, अजपा अजाब, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्मणा में क्या हो ये बाबा करा रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये सोचो, कोई मुश्किल आने वाली नहीं है, सब ठीक, मैं प्लानिंग करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ नहीं, आप यही सोचते रहो बाबा बाबा का तोड़ते रहो, सब समस्याएं हल हो जाएगी। हम आप देखो हमारा ज्ञानमत भवन कितना लंबा चौड़ा काम है, हमें लोग कहते थे दिल्ली वाले जब हम वहां से आए कि एक दो साल में तुम छोड़ छाड़ के वापस आ जाओगे, वहां प्रेस चलने वाला नहीं है, परंतु 24 साल से लेकर आज तक एक दिन भी प्रेस हमारा बंद नहीं हुआ। बोलिया चल रहा है बाबा के कि बाबा के वही चला रहा है। वो कहते वो अब मानते हैं इस बात को कि आप नहीं चला रहे, आपका बाबा चला रहा है। हम बताएं आप, इसलिए आपका कोई भी काम है और कुछ ज्यादा सोचो मत, अंदर बाबा 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 सोचते रहो, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, कोई बात नहीं। हम बताएं आपको, टाइम तो आप होने वाले के, मैं और की बताता हूं। अभी मुरली में एक आया था पॉइंट, बाबा ने दो बार आया, बाबा ने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा मैंने क्यों संन्यास किया, मैंने घर बार छोड़ दिया, बिजनेस भी छोड़ दिया, अपना व्यापार जो था वो भाईवाल को दे दिया, कहा जो तुम्हें देना मैं दे दो, अच्छा बाल बच्चों को भी ज्ञान में लगा दिया देख लो, और राजे रजवाड़े भी छोड़ दिए, उनसे कोई तल्लुक रखा नहीं, और यज्ञ की स्थापना की। क्यों किया ये? इसलिए कि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए, ये बाबा ने मुरली में कहा। तो ये देखिए, अभी शिव बाबा का कार्य चल रहा है, भगवान बता रहा है, भगवान तब वो ये हमें ज्ञान देकर के रास्ता दिखा रहा है, तरीका बता रहा है, और ताकत भी दे रहा है कि बच्चे इस संगम पर ही आप कर्मातीत बन सकते हो। सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, केवल संगम पर ही हम कर्मातीत फरिश्ता बन सकते हैं, एकदम प्योर पैस बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। अब अगर हम ना बनना चाहें तो क्या है, रह गए तो रह गए, इतनी अब क्या करें हम, केवल और कुछ नहीं करना। ये नहीं कहकर घर बार छोड़ के बैठ जाना है, बुद्धि ऐसी हो जाए कि ये मेरा नहीं ये बाबा का, ये कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं शरीर छोड़ जाऊं, कोई भी शरीर छोड़े, क्या साथ जाएगा? ना मकान जाएगा, ना दुकान जाएगा, ना जमीन जाएगी, ना जायदाद जाएगी, ना फिक्स डिपॉजिट जाएगा, ना कुछ नहीं जाएगा। साथ वो जो जाएगा जो आपने श्रेष्ठ कर्म कर लिए हैं, श्रेष्ठ संस्कार बना लिए हैं, किसी की दुआएं ले ली आपने, वो साथ जाएगी, वो खुशी साथ जाएगी, अच्छे संस्कार साथ जाएंगे। अभी वो मौका है बनाने का। तो हम तो भाई ऐसा हम सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सब तभी तो यहां पर आप भट्टी करने के लिए और तेजी लाने के लिए आए। तो क्या करना है हमको, ये सारा सुनाने का, बाबा मम्मा की पालना का बताने का, ये है कि हमको बाबा मम्मा समान बनना है। साथ औरों से डीलिंग ऐसे करनी है। बाबा मम्मा की पालना जबरदस्त थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे एक लौकिक बहन है, राज बहन, अमृतसर में रहती है, आप शायद जानते हो। उनको बीमारी कुछ तकलीफ होगी बहुत। उसने बाबा से कहा अच्छा मैं घर जाती हूं, ठीक ठाक होके दवाई वगैरह करके फिर वापस होंगी। बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे पास आओ। वो मधुबन में आई, वो नाभा में रहती थी, पता नहीं कहा मुझे याद नहीं रही। बाबा उनको दवाई तो खिलाई, इलाज कराया, वो सब देखा कराया। बाबा उनको रोज सेब काट के उस पर मक्खन लगा के अपने हाथ से खिलाते थे। बताइए, ये पालना है बाबा की। और फिर उसका वजन भी करते थे भी कितना ठीक हुआ ये। भगवान ने ऐसे पालना की है तो हमारा क्या फर्ज बनता है? बीमार कोई हो उसका पूरा इलाज करना चाहिए, पूरी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे बड़ों का, छोटों का, सभी का, अपने साथियों का होना चाहिए। यानी बीमार है सेवा तो ले ले और छोड़ दो फिर उसको, नहीं ऐसा नहीं। तो ये बाबा हमें सिखाता है, हमने बाप समान बनना है कि इस प्रकार से हमको डीलिंग करनी है। बाप समान बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए पहली शर्त यह है। क्या बनना है हमको कर्मातीत बनने के लिए? विकर्माजीत बनना है। अभी कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होता होगा, होता है कोई? बोलो, नो विकर्म पाप कर्म से डरना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं होगा, लोभ कर्म। सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत, कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, बुरा संकल्प, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से योग पावर से हमारी बैटरी चार्ज होती है, हम चार्ज करने के लिए आए हुए हैं। अगर विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, डर लगना चाहिए, ओहो मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो हटाओ उसको। अगर कोई आता है तो आना, आप आता भी नहीं होगा, विकल्पाजीत। थर्ड क्या है? थर्ड है व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी नहीं आना चाहिए, टाइम वेस्ट व्यर्थ में वो भी नहीं करना चाहिए, क्यों क्या कब कैसे, नो व्यर्थ अतीत। चौथा है साधारण अतीत, अब हमारे जो संकल्प हैं साधारण चलते हैं। मानो आप यहां से बाहर घूमने गए, क्या सोच रहे थे? कुछ विचार नहीं था। आप ट्रेन में आ रहे थे, क्या सोच रहे थे? कोई विचार नहीं थे, ना कोई, चलो विकल्प भी नहीं और वो भी नहीं, लेकिन कोई समर्थ भी नहीं थे, तो वो साधारण संकल्प होते हैं, ऐसे सिंपल, जिसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है। जैसे ना एक वो स्कूटर चलाते हैं, अब वो उसको किक लगा दो और वो चल रहा है, पेट्रोल जल रहा है और न्यूट्रल पर गाड़ी खड़ी है, न आगे जाती है न पीछे जाती है। तो ब्राह्मणों की जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पर ज्यादा है, भले विकर्म नहीं होते शायद, विकल्प भी नहीं आते होंगे, लेकिन व्यर्थ भी चलो कम हो गए, लेकिन अभी साधारण संकल्प है, तो उसको खत्म। बाबा का जो हर संकल्प था विशेष था, हर संकल्प, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प बाबा का विशेष था। बाबा किसी को ऐसे देखेंगे वो उड़ जाएंगे, इतनी ताकत, किसी पर ऐसे हाथ रखेंगे वो फूला नहीं समाएगा। तो बाप समान बनना है तो हमारा हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष चाहिए, समर्थ चाहिए, यह है पुरुषार्थ। उसके लिए क्या करना है? अपने संकल्पों पर ध्यान देना है, सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। अभी आप चल रहे थे पैदल, क्या सोच रहे थे, समझे जी? पहले कहते थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट, नाउ वी शुड से थिंक बिफोर यू थिंक। आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके मन में चल रहा था, बार बार विचार करो। तो और कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा बातें करने सोचने की दरकार नहीं, यही जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मस्तक मणि हूं, स्वच्छ आत्मा हूं, स्वतंत्र आत्मा हूं, यानी स्वस्थ आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, जो सात गुण हैं उनको याद करो, इसको रिवाइज करो, गो ऑन रिवाइजिंग इट, और कुछ संकल्प मत आने दो, और संकल्प आए उनको हटा करके इसको बार बार करो। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे, बच्चे जब तक रिवाइज नहीं करोगे रियलाइज नहीं होगा, सुन लो। मैं तो ये इसको करने की कोशिश करता हूं, बाबा ने एक ऐसा अच्छा मेथड बताया है मेरे तो उस मेथड से अगस्त बाबा ने बताया, जो बहुत जीवन में चेंज आया है, बहुत बदलाव आया है। वो कौन से है? पांच स्वरूपों की याद। देखो बाबा कहता है बिंदु बन बिंदु को याद करो, कहता है ना, फिर कहता है चक्कर को भी याद करो। चक्कर को क्यों याद करें भाई? चक्कर ज्ञान आपको मिल गया, उसको याद करने की क्या दरकार है? सोचने की बात है। कहते चक्कर को याद करोगे चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, बताइए। चार युग है, पांचवा संगम, इसको याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे? नहीं, इसमें बड़ी राज है। ये पांच स्वरूप में चक्कर भी आ जाता है, क्या उसमें हमेशा क्या है? मैं निराकार स्टेज, अकारी फरिश्ता स्टेज, देवता स्टेज, चक्कर घूम रहा था, फिर पूज्य स्टेज, फिर ब्राह्मण स्टेज। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम वो याद करो पुजारी स्टेज, बाबा ने ये नहीं कहा तुम कल कल युग को याद करो, ब्राह्मण संगम युग को याद करो। सारा ऊंचा उठाने की बातें है। योग हमारा कुछ नहीं, परंतु एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा हम सोचते हैं बार बार रिवाइज करते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, अगेन एंड अगेन रिवाइज इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट, और कोई संकल्प मत आने दो। सबसे अच्छी बात तो ये, अगर आप बिंदु बन बिंदु को याद करने में कठिनाई होती है तो वो भी करो। मैंने पूछा था दादी गुलदार से, दादी मुझे ये तो ये बड़ा अच्छा लगता है, 500 रूपों को याद करते रहो, खुशी भी होती है, मजा भी आता है, और कोई संकल्प और कहीं जाता भी नहीं है, इसी पांचों में याद रहता है। कहता ये अच्छी बात है, साथ साथ ये भी करो, फिर बिंदु रूप भी याद करो, ये भी कहा। मैंने दादी जानकी जी से कहा, दादी मैं आंख बंद करता हूं तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं, आंख खोलता हूं ये बहन दिखाई देती, ये सब दिखाई देता है, तो आंख बंद कर करने में क्या हर्जा योग करे तो। दादी ने कहा नहीं मैं, और मैं दादी ने कहा देखो मैं आंख खोल के भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को देखती हूं और कुछ दिखती नहीं, हमें ऐसा करना है, आंख खुली हो या आंख बंद हो परंतु उसमें शिव बाबा के, उसमें शिव बाबा दोनों बाबा दिखाई दे तो कोई बड़ी बात, अच्छी बात। तो इस प्रकार से जब तक आप ये जैसे भक्ति मार्ग में आपके यहां जगराते बहुत होते हैं, वो एक ही बात को 50 दफा रिवाइज करते हैं ना, एक गीत होगा वही बात में तुम आगे बढ़ो, वही करते रहे करते रहेंगे। तो बाबा भी यही कहता है, यही रिवाइज करो अपने आप को, बाबा को याद करो, अपने सात गुणों को याद करो, रिवाइज करो उसको, और नौ संबंधों को याद करो। मैं तो नौ संबंधों से याद करता हूं, बड़े रमणीक संबंध है, बहुत मजा आता है। बताऊं अब टाइम तो होने वाला है, फिर भी दो मिनट बताता हूं आपको। पहला संबंध कौन सा है बाबा से हमारा, मोस्ट बिलवड कौन सा है, बाप? नो, पहला संबंध क्या है, मदर, पहले हमारी मां है। पैदा कैसे होता है बच्चा, मां के बगैर तो बच्चा बाप होगा नहीं। मैं तो उनको जब रिवाइज करता हूं, बाबा यू आर माई डियरेस्ट मदर, डियरेस्ट, अति मीठी माँ हो। अगर है ब्रह्मा ना, ब्रह्मा तांत्रिक, तो ब्रह्मा बाबा एक, हम बाबा मीन बोथ, आई टेल यू, जब बाबा कहते हैं दोनों सामने आते हैं, तो दोनों को याद करने में नुकसान नहीं, फायदा ही है उसमें। हाँ शिव बाबा को भी करो, उनको भी करो, वो भी आता है सामने। डियरेस्ट मदर क्या करती है, वो कितना ज्ञान दूध पिलाया, ज्ञान दूध पिला पिला के हमको कितना बड़ा बना दिया, हृष्ट पुष्ट बना दिया है, ये वो करती है। दूसरा संबंध कौन सा है, स्वीटेस्ट फादर, इज अवर स्वीटेस्ट, बहुत मीठा बाबा है। क्या देता है वो, स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे दिया, मिल गया ना आप सभी को, मिल गया, स्वीटेस्ट, स्वीट होम और स्वीट राजधानी वर्षा देता है। थर्ड संबंध कौन सा है, हाईएस्ट टीचर है, हाईएस्ट, सिंपल नहीं है, हाईएस्ट, उस ऐसा कोई है नहीं, सब पढ़ाई उसमें आ जाती है, और सिंपल पढ़ाई है, क्या सिंपल, माता ही पढ़ती, कितना कितनी सिंपल पढ़ाई है, हाईएस्ट पढ़ाई, हाईएस्ट टीचर और सिंपलेस्ट पढ़ाई, और हाईएस्ट पद मिलता है, ऊंचे से ऊंचा पद, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, ये हमारा हाईएस्ट टीचर है। फोर्थ संबंध, चौथा कौन सा है, होलियस्ट सतगुरु, होलियस्ट, और कोई गुरु नहीं, एकदम परम पवित्र पावन बनाने वाला हमारा सतगुरु आशीर्वाद, और हमको क्या देता है, वरदान दे रहा है, हमको रोज वरदान देते हैं। पांचवा कौन सा है, अनफेलिंग फ्रेंड, सदा साथ निभाएगा। आप कई मैगजीन पढ़ते होंगे कैसा बाबा बच्चों का साथ देता है, एक वो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, वो स्कूटर पर बैठ के वो एक माता कहती जब मेरे साथ ही जैसे बैठा, मैं कैसे बचाया, उसमें बहुत आते हैं लोगों के हमारे पास, वो अनुभव आते हैं। ही इज एवर अनफेलिंग फ्रेंड, कभी छोड़ने वाला आपको नहीं, आप उसका भले कभी हाथ कैसे खींच लो लेकिन पकड़ के रखता है वो, अपना हाथ उसको दे दो आप, क्या क्या है वो, अनफेलिंग, सदा साथ निभाने वाला दोस्त है। देन और छठा कौन सा है, सलोना साजन, सभी का, बहनों का भी, भाइयों का भी, सरदार जी आपका भी सलोना साजन है, वो हमारा साजन है, वो समझे, बिल्कुल साजन है वो, क्या करता है हमको, वो ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करता है, किया ना श्रृंगार, अभी भी हो रहे हैं, देखो श्रृंगार का कहां ले जाता है, बोलिए ये रमणीक चीज है, ये इसको और इमार्ज करके सामने योग में बैठे, ये भी इमार्ज करे मेरा कौन है वो, वो सुलोना साजन है, ज्ञान से गुणों से शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है, हमें अनुभव किया। हमें तो ध्यानी दादी लेगी बाबा के कमरे में सुबह 4 बजे, अपने साजन से मिलो, ऐसा बताया तो ऐसे भाकी पनवाई और ऐसा लगा जैसे हम आउट ऑफ बॉडी हो गए, ऐसा अनुभव कराया। तो हमारा सुलोना साजन है वो, हमको श्रृंगार करके प्यार करके कहाँ ले आता है, पीआर घर, कहाँ ले जाएगा पीआर घर, फिर कहाँ भेजेगा, ससुर घर भेज, विष्णुपुरी भेज देगा, याद करो ये। और अगला कौन सा संबंध है, सुप्रीम सर्जन है वो, कोई चिंता मत करो, सब बीमारियां वो दूर करने वाला, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई साहब सब चुक तो करना पड़ेगा, वो सुप्रीम सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन लगा के हमारे तन मन को निरोग कर देता है। देन आगे क्या है, फेथफुल चाइल्ड, हम बताएं आप, यहां देखो भारत में बच्चा ना हो ना लोग घबराते हैं, बच्चा होना चाहिए बच्चा होना चाहिए, यहां तो वो कहते हैं वो बच्चा पैदा होता है आगे दीपक लेके चलता है, वो जाके आत्मा निकल गई बाकी बाड़ी के आगे दीपक लेता है, वो तो हमारा फेथफुल चाइल्ड है। इस विषय वतरणी नदी से भी सारे इस कलयुगी संसार से हमारा उंगली पकड़ के, चाहे बुजुर्ग भी आप हो जाएंगे, पकड़ के आपको साथ ले जाएगा, उसको अपना बच्चा समझो। हमारे पास अनुभव आते हैं, एक माता कहती मुझे, वो कहता है देखो माँ सब्जी जल रही है, ऐसे बोलता है वो, उसका बच्चा नहीं था, उसकी बच्चियां सब थी। एक आया था अनुभव, आप देखो मुझे सब गाइड करता है, एक सब वो गाइड करता है, तो ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। और लास्ट है मोस्ट बेनिफिट महबूबा, यानी शिव क्षमा है, हम उसके परवाने हैं। ही सत्यम शिवम और सुंदरम, ये वो सत्य भी है शिव भी है कल्याणकारी भी है, इसलिए अति सुंदर है। तो हमारी आंख और कहीं नहीं डूबे, उसी एक शिव क्षमा पर टिकी रहे, तो जिससे क्या हमको वो सब कुछ हमारा कार्य वो सब हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से योग भी हम जो याद कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल है मुश्किल है। रमणीकता से चेहरे खिले वो, बाबा से संबंधों से याद करो, गुणों को याद करो, बिंदु बन बिंदु को याद करो। बिंदु भी क्या है, बिंदु में कुछ है ऐसा ना, केवल बिंदु है वो, ज्ञान का सिंधु है, शांति का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है। इन गुणों को भी याद करो तो वो अपने में आएंगे। तो हम तो इस प्रकार से याद करते हैं, तो ये 5 स्वरूप है, ये बहुत वंडरफुल है। अगर आप इसको रिवाइज करते रहो, कोई भी आपको हमको वो वेस्ट खत्म हो जाएगा। जब भी टाइम, केवल बाबा ने कहा था केवल सारे दिन में 8 बार याद करो, तो हम 8 बार करते हैं, आप नहीं करते होंगे। बाबा ने कहा अगर नहीं करते तो सोने से पहले याद करके सोवो 8 बार, वो भी पद करते हैं कि नहीं करते, तो ये अवश्य करो। जब तक नहीं करेंगे तो विनाश कैसे आएगा, हम बाबा के होमवर्क को नहीं मानेंगे तो विनाश कैसे होगा। इसीलिए इस होमवर्क को भी करें, बाबा को याद भी करें, और सदा अपने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए इन शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे। कि सत्युग में क्या चाहिए, डबल क्राउन किंग, और वो शुद्ध संकल्पों के संचय से ही हिज हाईनेस भी बनेंगे तो हिज होलीनेस भी बनेंगे। तो हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी शारी नारायण बनना। ओम शांति, ओम।
का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी भाई बहनों को अपने अनुभवों से बाबा के पास बिल्कुल समीप अनुभव कराया।
भगवान हमारा।